समर्थ ने इतना बोलकर अर्पिता को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अर्पिता ने भी अपना सिर उसके सीने पर रखा। वो मन ही मन बोली, आई होप समर्थ जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो और वो अपने मम्मी पापा को मना ले, क्योंकि हमें अब जयराज के पास वापस नहीं जाना है और हम यहाँ राजमहल में भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। अर्पिता ये सब बातें सोच रही थी कि तभी समर्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब आप क्या सोच रही हैं अर्पिता? अर्पिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही, समर्थ ने अर्पिता को बेड पर लेटाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, आप यहाँ आराम से लेटिए, हम अपने रूम में जा रहे हैं। अर्पिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और समर्थ ने उसे बेड पर लिटाकर उसके माथे को चूमकर वो चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह अभिमन्यु हॉल में बैठा हुआ था, तभी समर्थ अभिमन्यु के पास आकर बोला, अभी हम मम्मी पापा से मिलने घर जा रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना है? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बस दो मिनट रुक जाओ, हम शगुन का सामान देख रहे थे। समर्थ ने देखा अभिमन्यु ने तीन चार बड़ी बड़ी थाल में अलग अलग तरह के शगुन का सामान रखा हुआ था। वो सब देखकर समर्थ ने अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, ये सब क्या है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु ने समर्थ की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मासा ने जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा ना, और वैसे भी बिना शगुन के तो हम जाने से रहे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने वहां खड़े घर के नौकरों को सारा सामान गाड़ी में रखवाने के लिए कहा, और जैसे ही वो सामान गाड़ी में रखा वैसे ही समर्थ और अभिमन्यु तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहीं अर्पिता इप्सिता के साथ वही राजमहल में रुकी हुई थी। इप्सिता ने अर्पिता के चेहरे की तरफ देखा, उसका चेहरा घबराहट की वजह से पीला पड़ रहा था। तभी इप्सिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इतना क्यों घबरा रही हैं अर्पिता, वैसे भी अभिमन्यु और समर्थ है ना, वो दोनों सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। अर्पिता ने इप्सिता की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाया। वहीं थोड़ी ही देर में समर्थ और अभिमन्यु सीधे समर्थ के घर पहुंचे। समर्थ की हवेली भी काफी ज्यादा बड़ी थी। वे जैसे ही वहां पहुंचे, समर्थ के मम्मी पापा जो वही हॉल में ही बैठे हुए थे, उन दोनों ने समर्थ के साथ अभिमन्यु को देखा और वे लोग बड़े ही खुश होते हुए बोले, क्या बात है समर्थ, आज तो राजा सा यहाँ आए हुए हैं, आखिर क्या बात है? समर्थ अपनी मम्मी के पास गया और उसने उन्हें हक करते हुए कहा, कैसी हैं मम्मी आप? समर्थ की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी हूँ मैं, और कितने दिनों बाद मिलने आए हो तुम हमसे, तुम्हें हमारी याद नहीं आती क्या? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, याद तो बहुत आती है, लेकिन काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तभी समर्थ के पापा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे बात क्या है, तुमने आज हमें ऑफिस जाने से क्यों रोका, कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें हमसे? जैसे ही समर्थ के पापा ने ये बात कही, वैसे ही अभिमन्यु के पीछे से घर के नौकर शगुन की थाल लाकर वही हॉल में रखने लगे, जिसे देखकर समर्थ के मम्मी और पापा दोनों ही काफी ज्यादा कन्फ्यूज हो गए। उन्होंने समर्थ की तरफ देखा और वो अभिमन्यु के पास आकर बोले, अभिमन्यु बेटा, ये सब क्या है? अभिमन्यु ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अंकल आंटी, हमारी तरफ से शगुन। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, समर्थ के मम्मी और पापा दोनों ही बड़ी हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु किस शगुन की बात कर रहा है। तभी समर्थ ने अपने मम्मी पापा के पास आकर कहा, मम्मी पापा, एक्चुअली मैं अर्पिता से शादी करना चाहता हूँ और मैं यही बात आप लोगों से बताना चाहता था, इसीलिए मैंने आज आपको ऑफिस जाने से रोका। जैसे ही समर्थ ने ये बात कही, उसके मम्मी पापा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। समर्थ ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी, मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। समर्थ की बात सुनते ही उसने उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहा, समर्थ, तुम होश में तो हो ना, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? अर्पिता शादीशुदा है, उसकी जयराज से शादी हुई है, तुम उनसे शादी करने के लिए कैसे बोल सकते हो? और अभिमन्यु, आप इन दोनों की शादी के लिए कैसे मान गए? आप अपनी बहन का बसा बसाया घर कैसे उजाड़ सकते हैं? अभिमन्यु ने समर्थ की मम्मी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, हम अर्पिता का घर उजाड़ नहीं रहे, बल्कि, अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी समर्थ के पापा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, जो आप इस तरह से किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। समर्थ ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं पापा, आप लोग दोनों ही पहले हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए, अर्पिता का जयराज से डाइवोर्स हो गया है, वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसने कभी भी अर्पिता से प्यार नहीं किया, वो उसे डिजर्व ही नहीं करती। समर्थ की ये बात सुनकर उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या वो तुम्हें डिजर्व करती है? समर्थ ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी बिल्कुल,
वो मुझे डिजर्व करती है, बल्कि वो नहीं, मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया था कि क्या मैं उसे डिजर्व करता हूँ या नहीं। वो बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करूंगा। जैसे ही समर्थ ने ये बात कही, समर्थ की मम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने समर्थ को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो तुम। अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा समर्थ। अर्पिता इस घर की बहू नहीं बन सकती, वो पहले से ही शादीशुदा थी और अब तो उसका डाइवोर्स भी हो गया है। तुम्हें लगता है हम अपने खानदान में एक डाइवोर्सी लड़की से तुम्हारी शादी करवाएंगे? जैसे ही समर्थ की मम्मी ने ये बात कही, समर्थ ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मतलब है मम्मी आपका, कहना क्या चाहती हैं? अभिमन्यु ने समर्थ के मम्मी पापा की तरफ देखा, वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। तभी अभिमन्यु समर्थ के बगल में आकर खड़ा हुआ और उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आंटी, आप लोग अभी भी किसी जमाने में जी रहे हैं, आजकल कौन इन सारी चीजों को मानता है? और वैसे भी अगर समर्थ और अर्पिता दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं तो हमें नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभिमन्यु की ये बात सुनकर समर्थ के पापा ने उसे रोकते हुए कहा, अभिमन्यु, आप अपने राजमहल में राजा सा होंगे, लेकिन आप हमारे फैमिली मैटर में ना बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा, और वैसे भी अभी हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो आप चुप ही रहें। समर्थ के पापा ने जैसे ही अभिमन्यु से ये बात कही, अभिमन्यु दो कदम पीछे हटा और बिल्कुल चुप हो गया। समर्थ ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी पापा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझ पर इस तरह हाथ उठाएंगे, क्या सच में आप लोगों को हमारी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है? समर्थ की मम्मी ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल है, और हम आज तक तुम्हारी सारी जिद पूरी करते आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इस जिद को भी पूरा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम इस घर के एक लौते वारिश हो और तुम्हें लगता है कि हम इस तरह किसी डाइवोर्सी लड़की से तुम्हारी शादी कर दें? अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने धीमी आवाज में कहा, इप्सिता ठीक कह रही थी, हमें भी ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। अभिमन्यु इतना बोलकर समर्थ की तरफ देखने लगा। समर्थ ने गुस्से से तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मम्मी क्या बोल रही हैं आप? आप अर्पिता के लिए ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? मैं उनसे प्यार करता हूँ।
समर्थ के पापा, जो उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मत भूलो समर्थ, तुम हमारे खानदान के एक लौटे वारिस हो और तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। जहां तक हमें खबर मिली है, अर्पिता को उसके पति ने इसीलिए डिवोर्स दिया क्योंकि वो उसके खानदान को वारिस नहीं दे पाई है। तुम्हें लगता है कि हम उसे अपने घर की बहू बना लेंगे? समर्थ अपने पापा की ये बात सुनकर उनकी तरफ घूरते हुए बोला, लेकिन पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ। समर्थ की बात सुनकर समर्थ के पापा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, एक बात बार बार दोहराने से सच बदल नहीं जाता समर्थ, और सच यही है कि तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो हमारे खानदान को एक वारिस नहीं दे सकती तो हम उन्हें अपने घर की बहू नहीं बना सकते। आप खुद ही सोचिए, अगर हमने आपकी शादी एक बांझ लड़की से कर दी तो हमारे खानदान का वंश कैसे चलेगा? आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? अभिमन्यु, जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, वो अब अर्पिता के बारे में और कुछ नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वहां से चले जाना ही सही समझा। To be continued.